एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम भारतीय सिनेमा की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं।
हाँ, लेकिन ये सफर थोड़ा अलग होगा। मतलब हम सिर्फ हिट फिल्मों या स्टार्स की बात नहीं करेंगे।
बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे आशीष राजाध्यक्ष के जो विचार हैं उनके जरिए ये समझने की कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट कैसे नहीं है।
सही कहा, बल्कि इसने कैसे हमारे आज के भारत की पहचान, राजनीति और समाज को मतलब एक आकार दिया है।
और देखिए, ये विषय आज भी कितना जरूरी है। सिनेमा तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है ही, है ना? बड़े पर्दे पर, मोबाइल पर, हर जगह।
हाँ बिल्कुल।
तो ये समझना कि सिनेमा कैसे बना, कैसे बदला, इसका हम पर क्या असर हुआ और कौन सी ताकतें इसे चलाती रहीं, ये एक तरह से आज के भारत को ही बेहतर ढंग से जानना है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये हमारी सोच बनाती भी है।
सही है, तो चलिए शुरू करते हैं आशीष राजाध्यक्ष से। ये हैं कौन और इनका नजरिया इतना मतलब खास क्यों है?
देखिए, आशीष राजाध्यक्ष भारत के बहुत ही जाने माने फिल्म हिस्टोरियन है, कल्चरल थिंकर है। और उनकी शोहरत सिर्फ फिल्मों की लिस्ट बनाने तक नहीं है, वो कल्चरल स्टडीज, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी।
बाप रे, तो भारी शब्द है। मतलब आसान भाषा में?
हाँ, आसान भाषा में कहें तो वो ये देखते हैं कि हमारी संस्कृति, पैसा, सत्ता का खेल और हमारा इतिहास, ये सब मिलकर फिल्मों पर कैसे असर डालते हैं।
अच्छा।
उनकी एक बहुत मशहूर किताब है, पॉल विलेमन के साथ मिलकर लिखी हुई, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन सिनेमा।
हाँ, सुना है मैंने उसके बारे में। और उनका जो अप्रोच है वो वाकई अलग है। वो सिर्फ किताबी बातों में नहीं फंसे रहते हैं ना?
बिल्कुल नहीं, वो पॉपुलर सिनेमा को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो भारतीय सिनेमा को किसी वेस्टर्न चश्मे से नहीं देखते।
मतलब
अक्सर हम अपनी फिल्मों की तुलना हॉलीवुड से या यूरोपियन आर्ट फिल्मों से करते हैं। राजाध्यक्ष कहते हैं नहीं, इसे इसके अपने कल्चरल माहौल में समझो। भारत में सिनेमा कैसे काम करता है, समाज में इसका क्या रोल है, इस पर जोर देते हैं। उनके लिए सिनेमा सिर्फ समाज का आईना नहीं है,
बल्कि
समाज को बनाने वाला, बदलने वाला एक एक्टिव एजेंट है, एक ताकत है।
अच्छा, तो अगर हमें उनके काम का निचोड़ समझना हो तो मेन आइडिया क्या है?
उनका मुख्य तर्क ये है कि जिसे हम इंडियन सिनेमा कहते हैं ना, वो कोई एक सीधी साधी चीज नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस पर हमेशा बहस चलती रही है और इतिहास ने इसे गढ़ा है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की कहानी नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये एक तरह का मैदान जंग है, जहां भारत का मतलब क्या है एक देश के तौर पर, संस्कृति के तौर पर, समाज के तौर पर, इस पर लगातार बहस हुई, इसे गढ़ा गया, बार बार डिफाइन किया गया।
अच्छा, मतलब सिनेमा का इतिहास और भारत का राजनीतिक सामाजिक इतिहास, ये दोनों जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल, सरकार क्या चाहती थी, इंडस्ट्री को बाजार में क्या बेचना था, अलग अलग इलाकों की अपनी पहचान, बाहर से आती टेक्नोलॉजी, पैसा, इन सबके बीच एक लगातार मतलब खींचतान चलती रही है।
समझ गया। और राजाध्यक्ष का मकसद यही है कि हम ये ना सोचें कि भाई बॉलीवुड ही इंडियन सिनेमा है।
एग्जैक्टली। वो एक ज्यादा गहरी तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग तरह की फिल्में इंडियन सिनेमा के छाते के नीचे आईं और इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल नतीजे क्या हुए।
चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं, टाइमलाइन के हिसाब से चलते हैं। शुरुआती दौर से शुरू करें, जब सिनेमा भारत आया ही था।
आया लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में। वो सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो माहौल था अंग्रेजी हुकूमत का।
हाँ, कॉलोनियल दौर था,
तो सिनेमा का आना भी उसी माहौल में हुआ, उसे उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है।
और फिर आते हैं दादा साहब फाल्के, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा।
हाँ,
राजाध्यक्ष उन्हें सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं मानते, सही?
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उन्हें एक नेशनलिस्ट कल्चरल फिगर के तौर पर देखते हैं। उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद
1913 में,
हाँ, वो एक माइथोलॉजिकल कहानी थी, लेकिन उसे चुनना सिर्फ कहानी चुनना नहीं था। राजाध्यक्ष मानते हैं कि एक सोचा समझा पॉलिटिकल कदम था।
पॉलिटिकल कैसे?
हाँ, एक स्वदेशी तमाशा बनाना जो वेस्टर्न कल्चर के मुकाबले भारतीय संस्कृति को खड़ा करे। तो देखिए, शुरुआत से ही सिनेमा नेशनल आइडेंटिटी के सवाल से जुड़ गया।
जाहिर है उस वक्त मुश्किलें भी बहुत होंगी।
अरे बहुत ज्यादा, इंडस्ट्री बिखरी हुई थी, पैसा कम था और सबसे बड़ी बात, बाहर की फिल्मों, खासकर अमेरिकन फिल्मों से जबरदस्त कंपटीशन था। कुछ ऐसा बनाना था जो अपना लगे और सस्ता भी हो।
फिर आई आवाज, अलमारा 1931, उसने तो सब बदल दिया होगा।
हाँ, वो तो एक क्रांति थी, पूरी इंडस्ट्री बदल गई और सबसे बड़ा असर हुआ फिल्म संगीत का।
गाने?
हाँ, गाने सिर्फ डाले नहीं जाते थे, वो कहानी कहने, इमोशंस जगाने का जरिया बन गए और ये चीज तो भारतीय सिनेमा की पहचान बन गई जो आज तक है।
लेकिन आवाज आने का एक और पहलू भी था, है ना? राजाध्यक्ष बताते हैं।
हाँ, वो एक डबल एज स्वॉर्ड थी, मतलब दो धारी तलवार। एक तरफ हिंदुस्तानी यानी हिंदी उर्दू मिक्स फिल्मों के लिए एक बड़ा नेशनल मार्केट बना, नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया जुड़ गया।
अच्छा।
लेकिन इसी वजह से भाषा की दीवारें और मजबूत हो गई, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी सिनेमा को अपनी अलग पहचान बनाने का एक पुश मिला।
और इसी दौर में वो बड़े स्टूडियोज भी आए, प्रभात, बॉम्बे टॉकीज, न्यू थिएटर्स।
हाँ बिल्कुल, ये हॉलीवुड की तरह काम करते थे, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियन सब पेरोल पर, एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बनने लगी थी। और इसी दौर में सोशल रिफॉर्म वाली फिल्में भी बनी, जाति पर, विधवा पुनर्विवाह पर, छुआछूत पर। तो सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो प्रोग्रेसिव विचारों का प्लेटफॉर्म भी था।
फिर देश आजाद हुआ, 1947 के बाद नेहरू का दौर, अब नए देश को बनाने में सिनेमा का क्या रोल था?
आजादी के बाद सरकार ने सिनेमा को नेशन बिल्डिंग का एक पावरफुल टूल माना, एक मॉडर्न, सेक्युलर, प्रोग्रेसिव भारत का सपना था और लगा कि सिनेमा इसमें हेल्प कर सकता है।
लेकिन
साथ ही सरकार कमर्शियल सिनेमा को थोड़ा शक से भी देखती थी, लगता था कि ये ज्यादा बाजारू है, शायद नैतिक रूप से ठीक ना हो।
तो सरकार ने दखल दिया?
हाँ, कई तरह से। सरकारी प्रचार के लिए फिल्म्स डिवीजन बना जो आज भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है।
हाँ।
पुणे में FTI खुला ताकि सीरियस फिल्म मेकर तैयार हों। सेंसरशिप आए, टैक्स लगे, स्टेट और इंडस्ट्री का एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता बना।
और इसी दौर की फिल्मों पर राजाध्यक्ष का वो नेशनल एलेगोरी वाला आइडिया है, वो क्या है?
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। राजाध्यक्ष कहते हैं कि उस दौर की बड़ी हिट फिल्में जैसे मदर इंडिया, आवारा, दो बीघा जमीन,
क्लासिक्स हैं ये तो।
हाँ, तो ये सिर्फ किरदारों की कहानियां नहीं थी, ये असल में नए नए आजाद हुए देश की कहानी कह रही थी रूपक में।
अच्छा, कैसे?
उनमें जो किरदार थे वो त्याग करने वाली माँ, गरीब किसान, शहर में भटका नौजवान, वो असल में नए देश की चुनौतियों, उसके संघर्षों के सिंबल थे। परंपरा बनाम आधुनिकता, गांव बनाम शहर, व्यक्ति और समाज का टकराव, ये सारे बड़े मुद्दे उन कहानियों में थे।
वाह, मतलब ये फिल्में अनजाने में ही राष्ट्र की एक इमेज बना रही थी, लेकिन ये जो एक आम सहमति वाला दौर था, ये हमेशा तो नहीं चला होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। 60 के दशक के आखिर और 70 के दशक में दरारें दिखने लगीं। देश में पॉलिटिकल उथल पुथल थी, इकॉनमी धीमी थी, लोगों में मोह भंग था, फिर इमरजेंसी भी आई।
हाँ।
वो जो नेहरू वाला आशावाद था वो टूट रहा था और इसका असर सीधा सिनेमा पर दिखा।
क्या यहीं से वो नई लहर या पैरेलल सिनेमा शुरू हुआ, जैसे भुवन शोम से?
हाँ बिल्कुल, सत्यजीत रे तो पहले से थे, पर मृणाल सेन, श्याम बेनेगल, मनी कौल, कुमार शाहनी जैसे डायरेक्टर सामने आए। इन्हें अक्सर सरकारी संस्था FFC से पैसा मिलता था।
अच्छा।
ये फिल्में मेनस्ट्रीम से बहुत अलग थीं, ज्यादा रियलिस्टिक, पॉलिटिकल और गाने डांस वाला फॉर्मूला नहीं। राजाध्यक्ष इन्हें सिर्फ आर्ट सिनेमा नहीं कहते, वो मानते हैं कि ये मेनस्ट्रीम सिनेमा और उसके नेशन वाले आइडिया को एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज थी।
और कमाल देखिए, इसी दौर में मेनस्ट्रीम में भी एक जबरदस्त बदलाव आया, एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन।
हाँ, जंजीर, दीवार। राजाध्यक्ष कहते हैं कि ये किरदार उस वक्त के माहौल से निकला था, लोगों में सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था, निराशा थी। ये एंग्री यंग मैन उसी का प्रतीक था, एक हीरो जो सिस्टम से लड़ता है, कभी कभी कानून हाथ में लेकर, क्योंकि उसे लगता है सिस्टम फेल हो गया है, वो पब्लिक के गुस्से को आवाज दे रहा था।
इस गुस्से और निराशा का माहौल शायद 80 के दशक में और गहनाया, उसे तो खोया हुआ दशक भी कहते हैं, क्यों?
उसके कई कारण है। एक तो VCR आया, वीडियो पायरेसी बहुत बढ़ गई, लोग हॉल कम जाने लगे।
हाँ, घरों में देखने लगे।
दूरदर्शन भी तेजी से फैल रहा था और क्रिटिक्स मानते हैं कि हिंदी फिल्मों की क्वालिटी भी गिरी, कहानी के बजाय सस्ते एक्शन, लाउड मेलोड्रामा पर जोर बढ़ गया।
लेकिन क्या ये पूरी तरह बस गिरावट का ही दौर था?
राजाध्यक्ष इसे सिर्फ खोया हुआ दशक नहीं, एक ट्रांजिशन पीरियड भी मानते हैं। वो कहते हैं कि इसी दौर में रीजनल सिनेमा, खासकर साउथ में, मलयालम तमिल सिनेमा में नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जो सफल भी थे।
अच्छा।
और हिंदी इंडस्ट्री भी अंदर अंदर बदल रही थी, नई टेक्नोलॉजी, नए नैरेटिव्स की तैयारी हो रही थी। ये आने वाले बड़े बदलाव की जमीन थी।
और वो बड़ा बदलाव आया 1991 के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ। इसका क्या असर हुआ?
बहुत गहरा। उदारीकरण ने एक नई कंज्यूमर कल्चर बनाई। बाजार खुले, विदेशी पैसा, सामान आया, शहरों में एक नया अमीर मिडिल क्लास बना और NRI एक बहुत जरूरी ऑडियंस बन गए।
और फिल्मों ने इसे कैसे दिखाया?
इंडस्ट्री ने बहुत तेजी से इसे पकड़ा। हम आपके हैं कौन, DLDJ जैसी बड़ी हिट्स आई, इनमें भव्यता थी, फैमिली फंक्शंस का जश्न था, कंज्यूमर चीजें थीं। ये एक ऐसे भारत का विजन था जो ग्लोबल था, मॉडर्न था, पर ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज का दावा भी करता था, खासकर NRI को सोचकर।
और क्या बॉलीवुड शब्द यहीं से ज्यादा पॉपुलर हुआ?
हाँ, राजाध्यक्ष जोर देते हैं कि बॉलीवुड सिर्फ हिंदी सिनेमा का निकनेम नहीं है, ये लिबरलाइजेशन के बाद का एक नया ब्रांड है।
ब्रांड?
हाँ, एक खास किस्म का सिनेमा, ज्यादा पॉलिश्ड, ग्लोबल लुक वाला, जो ग्लोबल इंडियन की उम्मीदों को पूरा करे। अक्सर एक साफ सुथरी, अपर क्लास, शहरी और कई बार हिंदू सेंट्रिक दुनिया दिखाता है, जो यहाँ के अमीरों और बाहर बसे भारतीयों दोनों को पसंद आए।
तो क्या आज ये बॉलीवुड मॉडल ही सब कुछ है?
राजाध्यक्ष और आज के एनालिस्ट बताते हैं कि अब फिर चीजें बदल रही हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं।
हाँ, नेटफ्लिक्स, Amazon,
और साथ ही रीजनल सिनेमा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जबरदस्त हिट हो रहा है देश भर में, दुनिया भर में।
सही का, RR, KGF, बाहुबली।
हाँ, तो ये जो एक बॉलीवुड सेंट्रिक मॉडल था, उसको अब तगड़ा चैलेंज मिल रहा है। लोगों के पास अब बहुत चॉइस है।
तो इन सारी बातों का मतलब निचोड़ क्या निकालें? राजाध्यक्ष के एनालिसिस से क्या मेन पॉइंट्स या संदेश हैं?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी, सिनेमा और नेशन बिल्डिंग का गहरा कनेक्शन। फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहीं, वो लगातार बताती रहीं कि इंडियन होने का मतलब क्या है।
और ये आज भी चल रहा है, देशभक्ति फिल्मों में जैसे।
बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है, स्टेट और इंडस्ट्री के बीच का वो टेंशन और डायलॉग। सरकार कंट्रोल करना चाहती है सेंसरशिप, नियम, और इंडस्ट्री बचती है या समझौता करती है, ये आज भी है।
सही। तीसरा?
तीसरा है वो पैन इंडियन का आइडिया बनाम रीजनल सिनेमा की सच्चाई। हिंदी या बॉलीवुड ही सब कुछ नहीं है, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, सबका अपना रिच ट्रेडिशन है, अपनी पहचान है।
हाँ, जो अब ज्यादा दिख रहा है।
चौथा, जिस पर राजाध्यक्ष बहुत जोर देती हैं, मेलोड्रामा और संगीत। इन्हें अक्सर वेस्टर्न नजरिए से कमजोरी माना गया।
हाँ, कि ये रियलिस्टिक नहीं है।
लेकिन राजाध्यक्ष कहते हैं, ये कमजोरी नहीं, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहानी कहने, इमोशंस जगाने, ऑडियंस से कनेक्ट करने के बहुत सोचे समझे, असरदार तरीके हैं। सोचिए क्यों कुछ गाने या सीन हमें रुला देते हैं या हंसा देते हैं, उनका अपना लॉजिक है।
ये इंटरेस्टिंग है। और पांचवा?
पांचवा, सिनेमा और सोशल चेंज। फिल्में सिर्फ आईना नहीं है, वो समाज को बदल भी सकती हैं, बहस छेड़ सकती हैं, नए आइडियाज ला सकती हैं, सवाल उठा सकती हैं।
राजाध्यक्ष के विचारों में कुछ बातें ऐसी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। कुछ उनके खास कोट्स या आइडियाज पर बात करें।
जरूर। जैसे वो कहती हैं कि भारतीय सिनेमा की पहचान वेस्टर्न स्टैंडर्ड से कम होना नहीं, बल्कि इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सिनेमा का एक अल्टरनेटिव ग्रामर, एक अलग भाषा बनाना है।
मतलब उसे हॉलीवुड के चश्मे से मत देखो, उसकी अपनी शर्तों पर समझो।
बिल्कुल। और संगीत, डांस पर उनका आइडिया। भारतीय फिल्मों में गाने, डांस सिर्फ सजावट नहीं है, ये स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये वो कहानी और इमोशन का काम करते हैं जो सिर्फ डायलॉग से नहीं हो सकता।
यानी गाने, डांस फालतू नहीं है, जरूरी है कहानी के लिए।
हाँ, और एक और बात, सिनेमा की जोड़ने की ताकत पर। भारतीय सिनेमा ने एक कॉमन कल्चरल वोकैबुलरी बनाई जिसने भाषा, रीजन, क्लास की हदें पार की और मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी बनाने में मदद की।
मतलब फिल्मों ने इतने अलग अलग लोगों को जोड़ा।
हाँ, और मेलोड्रामा पर। मेलोड्रामा को सिर्फ ओवर इमोशनल कहकर खारिज मत करो, ये आम लोगों से जुड़कर सोशल और मॉरल सवाल उठाने की एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजी है।
यानी मेलोड्रामा के जरिए भी गंभीर बातें हो सकती हैं।
बिल्कुल। और आखिर में बॉलीवुड पर। बॉलीवुड सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का दूसरा नाम नहीं है, ये लिबरलाइजेशन के बाद का एक ब्रांड है, ये इंडिया का एक खास कंज्यूमर वाला और अक्सर साफ सुथरा नजरिया यहाँ के अमीरों और बाहर बसे प्रवासियों दोनों को बेचता है।
ये याद दिलाता है कि आज का बॉलीवुड एक खास इकोनॉमिक और कल्चरल प्रोडक्ट है।
सही।
ये सारे विचार तो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम फिल्में देखते कैसे हैं, इनको हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पहले तो हम ज्यादा अवेयर और क्रिटिकल व्यूअर बन सकते हैं। कोई भी फिल्म या सीरीज देखें तो सोचें किसके नजरिए से है, कैसा इंडिया दिखा रही है, कौन सेंटर में है कौन बाहर, ये हमारी सोच पर क्या असर डाल रही है।
हाँ, ये तो जरूरी है। दूसरा,
सिर्फ बॉलीवुड या हिंदी फिल्मों तक ना रुकें। इतनी भाषाएं हैं, इतनी बढ़िया फिल्में बन रही हैं, थोड़ा वक्त निकालकर रीजनल सिनेमा देखें, सराहें, अपने ही देश की डाइवर्सिटी का पता चलेगा।
सही कहा।
तीसरा,
कल्चरल बारीकियों को समझें। पुरानी फिल्मों के मेलोड्रामा या गानों का आज के हिसाब से मजाक उड़ाने के बजाय समझें कि उनका उस जमाने में क्या मतलब था, वो क्यों हिट हुए, उनका अपना एक कल्चरल लॉजिक होता है।
चौथा,
पॉलिटिक्स और मीडिया के कनेक्शन पर ध्यान दें। देखें कि कैसे फिल्में, खासकर हिस्टोरिकल या देशभक्ति वाली, आज भी पॉलिटिकल विचारों को बनाने फैलाने का काम करती हैं।
बिल्कुल। और पांचवा, ग्लोबलाइजेशन और कल्चर के रिश्ते को देखें। आज की फिल्में कैसे कंज्यूमर कल्चर को बढ़ावा देती हैं, और सोचें कि ये जो नया चमकता इंडिया दिख रहा है उसमें किसकी जगह है, कौन बाहर है।
तो अंत में इस पूरी चर्चा से क्या खास बात आपके जहन में रही? मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि फिल्में कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, पॉलिटिक्स, समाज, इकोनॉमी सब जुड़ा है। और हाँ, अब मैं मेलोड्रामा को शायद थोड़ी ज्यादा इज्जत दूंगा।
और मेरे लिए सबसे अहम ये समझ है कि इंडियन सिनेमा कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये लगातार बदल रहा है, बन रहा है, इस पर हमेशा बहस है, और बॉलीवुड से आगे बढ़कर देखना कितना जरूरी है।
बिल्कुल। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि सिनेमा, कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी की एक जबरदस्त ताकत रहा है और है, जिसने मॉडर्न इंडिया के एक्सपीरियंस को बहुत गहराई से शेप किया है।
हाँ, और आशीष राजाध्यक्ष हमें सिखाते हैं कि फिल्मों को सिर्फ देखो मत, उन्हें पढ़ो, एनालाइज करो, पर्दे की कहानी को पर्दे के पीछे की ताकतों से जोड़कर।
और शायद यही एक्टिव सोच आज के मीडिया सैचुरेटेड वर्ल्ड में सबसे जरूरी है, सिर्फ सिनेमा के लिए नहीं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन और कहानी के लिए।
बिल्कुल सही।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।